ஓம் சாந்தி. ஆஜ் ஹமாரே பட்டி கே பீச் மே பஹத் ஹி பாபா கே புரானே ரத்ன மூல்ய ரத்ன ஆதரணீய ஆத்ம பிரகாஷ் பாய் ஜி பஹுஞ்சே ஹே. ஆப் சப் ஆப்கோ ஜ்ஞானாமிரத் கே மாத்யம் சே लगभग जानते ही होंगे. आपने बड़ी ही छोटी आयु में अर्थात युवा अवस्था में ही बाबा का परिचय प्राप्त किया था. इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पढ़ते थे और बाद में 61 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया. बाबा के यज्ञ की आदि की सेवाओं में आपने विशेष योगदान दिया है. दिल्ली में शुरू शुरू में बाबा जब प्रदर्शनी के चित्र आदि के लिए डायरेक्शन देते थे और हाथों से पेंटिंग करवाते थे, तब तो ये मशीनें आदि नहीं थी, तब से आपने चित्रशाला मैं बहुत अथक होकर के सेवाएं दी. वहां छोटी सी चित्रशाला से शुरुआत हुई और फिर जगदीश भाई के साथ भी आपने विशेष सेवाएं की है. ज्ञानामृत का हिंदी ज्ञानामृत के भी आप संपादक हो, वर्ल्ड रिन्यूअल के भी प्रकाशक हो और मीडिया विंग जो हमारी बहुत ही अच्छी सेवाओं में रत है उनके भी आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हो. बड़े सरलचित स्नेही सहयोगी वफादार ईमानदार जो भी कहो बड़ों के आज्ञाकारी होकर के आज तक आपने सेवाएं दी है. और आज हम देख रहे हैं कि चित्रों की या साहित्य की सेवाएं कितनी आगे बढ़ चुकी है. शांतिवन में इतना बड़ा ज्ञानामृत प्रेस तो बना ही, फिर इससे भी बड़ा नीचे ही नदी के पास उसका भी कार्य चल रहा है, कुछ शिफ्ट भी हो गए हैं. तो इस प्रकार की बाबा की बेहद सेवाओं में जो विश्व तक आपकी सेवाएं पहुंच रही है, ऐसी सेवा के निमित्त बाबा ने आपको बनाया है. इसलिए हम और बाबा मम्मा के साथ साकार में आपने बहुत ही अच्छी तरह से उनको देखा है, अनुभव किया है. आज हम मम्मा का मास तो चल ही रहा है, मम्मा बाबा दोनों के साथ रह करके जो आपने देखा अनुभव किया वो आज की क्लास में सुनाएंगे. इसलिए ऐसे ही कहेंगे कि आज की सभा की रौनक है आप. दिल से हम अभिवादन करते हैं सब बड़े प्यार से आज. तो एक हाथ की ताली से हम सब आपका बहुत ही दिल से स्वागत करते हैं. स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है. तो मैं अभी नम्र निवेदन करती हूँ आप अपने क्लास के विषय बाबा मम्मा के साथ के अनुभव पर अच्छी तरह से प्रकाश डालेंगे. सबको बड़ा मजा भी आएगा बाबा की मम्मा की बातें सुनने में. तो आप बड़ी एकाग्रता से ध्यान से बातें सुने और जो भी उनकी विशेषता आदि सुने वो अपने जीवन में भी अपनाने का लक्ष्य रखें. ओम शांति.
ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. हम सभी बाबा के सीखी लगे बच्चे, ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा मुख मनीषावली है. बहुत ही सौभाग्यशाली है. क्यों सौभाग्यशाली है? पद्मा पदम भाग्यशाली है. कि आप दुनिया का हाल तो देख रहे हैं, सब जानते हैं कितना दुख दर्द सफरिंग्स, हाल चाल ठीक नहीं है। तो बाबा ने पहले ही बताया है कि सृष्टि के लिए, दुनिया के लिए आने वाला कल कैसा होगा बोलो, लोगों के लिए इस सृष्टि इस दुनिया के लिए आने वाला कल कैसे होगा, आज से खराब होगा पक्का। और हम ब्राह्मणों के लिए वो आने वाला कल कैसा होगा बोलो, बेटर होगा, गुड तो है ही, बेटर और बेस्ट होगा। हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, गोइंग अहेड, यानी हमारी तरक्की हो रही है, हर प्रकार से उन्नति हो रही है, और सारी दुनिया जो है गिरावट की तरफ जा रही है, रनिंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, ये आप देख रहे हैं। आप सब भारत को क्या, सारी दुनिया को देखो, भले आज कहते हैं आज ठीक हो गया, अगले दिन फिर बिगड़ जाता है, यदि कुछ ना कुछ होता रहता है, बिगड़ता रहता है और हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। क्यों, कितना अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, बात मत पूछिए, बहुत यानी बुरा हाल है, और इसमें कसूर किसका है, है ही नहीं। बाबा रोज कहते ड्रामा में ऐसा होना ही है, हर मुरली में मैं कहूं 10 बार तो बाबा ड्रामा को, ड्रामा अनुसार ही हो रहा है सब चीज, ड्रामा अनुसार हो रहा है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं ड्रामा अनुसार, ऐसी पाप वाली दुनिया को मैं भी नहीं देख सकता, इसका परिवर्तन करना ही है, ऐसा देख रहे हैं हम। तो चारों युग बीत गए, सत्यु क्या, त्रेता क्या, द्वापर क्या, कलयुग का भी अंत, अब हम कहां पहुंचे हैं, परशोत्तम किस पर, संगम युग पर, कलयुग जाएगा और सत्युग आएगा, नई दुनिया आएगी, उसमें जाकर हम राज करेंगे, और नई दुनिया बनाने के लिए ही शिव बाबा स्वयं परमपिता परमात्मा आते हैं। देखो आप जानते हैं सारी दुनिया में कोई कैसा भी नास्तिक हो, कोई कैसा भी बड़ा साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, अंत में वो गॉड को, अल्लाह को, ईश्वर को याद करता अवश्य है। जब वो शरीर छोड़ता है ना, बहुत ऐसे ऐसे स्टांस, आइंस्टाइन था और एक जो वो उसने क्या कहा था कि पहले बंदा थे, वो आदमी बना, ये बना वो बना, अपनी थ्योरी उसने बताई थी, उसको भी जब देखा अंत आया उसके सामने, तो वो भी बेचारा घबरा गया और गॉड को याद किया। सारी दुनिया परमात्मा को कभी ना कभी याद तो करती है, और सब धर्म वाले दो हस्तियों को भी याद करते हैं, और दो हस्तियां, एक है जगदम्बा सरस्वती और प्रजापिता ब्रह्मा। हम तो भारतवासी करते हैं, हिंदू धर्म वाले तो करते ही हैं, मुसलमान भी करते हैं, क्या कहते हैं, आदम और बीबी, वो भी कहते हैं आदम और बीबी, और क्रिश्चियन क्या कहते हैं, एडम एंड ईव, एडम एंड ईव कहते हैं, जैनी लोग कहते हैं आदि देव आदि देवी। नहीं, इस प्रकार से देखा जाए ऑलमोस्ट सो इतनी इंपॉर्टेंस है पिता ब्रह्मा बाबा की और जगदम्बा की के सभी धर्म वाले इसको याद करते हैं, क्योंकि वो क्या है, बीज है, ये जो कल्प वृक्ष है, सारी ह्यूमन ट्री है, उसके ये जो पहले दो पत्ते, शिव बाबा तो बीज है, परंतु जो पहले दो पत्ते हैं वो आदि देव एंड आदि देवी है, और उसके आगे हम ब्राह्मण सब उनके साथ हैं, फिर तना निकलता है, उससे ब्रांचेस निकलती है, तो किससे वो ताकत किससे लेते हैं, बीज से लेते हैं, या जो उस जड़ में बैठे हुए ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती हम ब्राह्मण हैं, तो हमारे कंधों पर क्या है, सारे कल्प वृक्ष की जिम्मेवारी है, मालूम होना चाहिए। वी आर सपोर्टिंग होल ऑफ कल्पाट्री, बहुत जिम्मेवारी है हमारे पर। तो हम जो के बीज है, पहले पहले दो पत्ते हैं, और उन्होंने हम शिव बाबा ने उनके द्वारा हमको चुना है। आप सभी भी कैसे आए हैं, आप भले जानते थे नहीं थे परमात्मा को ना इनको, परंतु आप कैसे आए, उन्होंने आपको ढूंढ निकाला, मानो किसी ने आपको पर्चा दिया, किसी ने आपको निमंत्रण दिया, या कभी किसी सेंटर पे गए। उस वक्त ये थोड़ा मालूम था कि हमें हम कोई भगवान को मिलने जा रहे हैं, ये भी मालूम नहीं था कि हमें भगवान मिल जाएगा, परमात्मा के घर में जा रहे हैं, किसी को मालूम नहीं। तो क्या मालूम था कि भी हाँ सत्संग में जा रहे हैं, यहां आके मालूम पड़ा कि स्वयं भगवान ईश्वर और परमपिता परमात्मा का ये ज्ञान है, उसने ये वो ये ज्ञान दे रहा है, और ये पुरानी दुनिया को खत्म करके नई दुनिया की स्थापना कर रहा है। उसने हमको ढूंढा है, देखा जाए तो हमें नहीं मालूम था, उसने ढूंढा। इसी प्रकार से हमें भी, हम जब 20-21 वर्ष की एज के थे 1957 में, मैं बहुत लोग तो उस एज के भी यहां नहीं होंगे, और आप में से किसी ने बाबा मामा को देखा तो नहीं, देखा बाबा मामा को, कितने नहीं देखा कोई, आप बहन जी आप भी नहीं। तो मतलब उस समय हमें ये ज्ञान मिला 57 में, इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, लौकिक माँ बाप ने भाई ने हमें इंजीनियरिंग में भेजा था, और ये ज्ञान मिल गया हमको, बड़ी खुशी हुई। हम बताएं आपको, मुझे किसी ने पूछा, हम रशिया गए थे, कि आपका सबसे खुशी का दिन कौन सा था, मेरे से क्वेश्चन किया। तो आप भी अपने आप विचार करो, सारे जीवन में आपका खुशी का दिन कौन सा था, बताओ, बोलो, कोई एक बोले, बोलो आप, है क्या था। हाँ देखो, बिल्कुल ठीक कहा, कोई कहते हैं भगवान को मिल गया तो खुशी का दिन था, भगवान को तो बाद में मिले आप। सबसे बड़े बात तो ये थी कि हमको जब ये ज्ञान मिला, वंडरफुल ज्ञान है, आप सोचो कितना ऊंचा ज्ञान है, ये कमाल का ज्ञान है, वंडर, मैं तो उसकी कई परिभाषा करता हूं, वंडरफुल भी है, रैशनल ज्ञान है, कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है, समझ का ज्ञान है, बुद्धि गम्य है, साइंटिफिक है, अभी साइंस वाले इसकी वो खोज कर रहे हैं, और बुद्धि गम्य है। अभी देखो हमारे पीछे कुछ दिन आए थे सिख धर्म के लोग स्टडी करने के लिए कि ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान है क्या, ये चलता कैसे है, इतना बड़ा विश्वविद्यालय चल रहा है, कितनी 800 ब्रांचेज हैं, कितनी ब्रांचेज हैं, ये है, और इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, हाउ इज गोइंग ऑन, कैसे चल रहा है, देखिए वो लोग स्टडी करने आते हैं, ये है क्या, कैसे है। तो बहुत वंडरफुल, बुद्धिगम्य, रैशनल, साइंटिफिक, रीजनेबल ज्ञान है, हम बताएं आपको, ये नहीं कि आप मान जाओ, ऐसी बात नहीं है, रीजनिंग है इसके अंदर, तथ्य है इसके अंदर। तो जब ये ज्ञान मिलता है ना हमको, आप सभी को मिला होगा, तो आपको खुशी हुई होगी, खुशी हुई हुई थी आपको, हुए थे खुश के नहीं, मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो दिमाग है ना वो भरपूर हो जाता है, बहुत खुशी मिलती है, आनंद आता है। कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछो तो गोप गोपियों से पूछो, वो दिखाते हैं वो उसको विष्णु जी को, वो उस पर शेष नहीं है, वो नाग भी है, दिखाते हैं समुन्द्र में लेटा हुआ, और लक्ष्मी जी उसके पांव दबाती दिखाते हैं, वो मुस्कुरा देते हैं विष्णु जी, तो लक्ष्मी पूछती है कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मेरी कोई सेवा में कमी है क्या। उसने कहा नहीं, मैं क्या क्यों मुस्कुरा रहा हूं, गीता ज्ञान को सिमरण करके मैं मुस्कुरा रहा हूं, खुशी हो रही मुझे। तो ये गीता ज्ञान तो है, और क्या है ये स्वयं गीता के भगवान ने ज्ञान दिया है, इसको याद करते हैं, इसको हम रिवाइज करते हैं, इसको हम अब देखते हैं, मजा आता है, बहुत बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद आता है। देखिए आप, जब ऐसा ज्ञान हमको भी मिला बहुत खुशी हुई। जैसे इन्होंने कहा ना पहले आत्मा का ज्ञान मिला, तो हमें एक बड़े मित्र थे ओम प्रकाश जी जो इंदौर जोन के इंचार्ज थे, वो भी हमारे क्लास फेलो थे, वो ज्ञान लेके आए थे अम्बाला से। हम पटियाला में इकट्ठे एक कमरे साथ साथ रहते थे, तो वो मुझे सुनाना शुरू करते थे आप आत्मा है आत्मा है आत्मा है, हमका हम तो आत्मा है ही नहीं। वो बोले आप आत्मा है, हमका हम आत्मा कैसे है, ये तो मशीनरी है, इसमें कोई पुर्जा खराब होता है तो खत्म, ये मोटर खत्म हो जाती है, हम कैसे आत्मा है। तो एक बार हमने कह दिया हाँ जी हम आत्मा है, बोल दिया, तो हम अंदर मानते थे हम आत्मा है, क्योंकि बचपन में लोग माँ बाप ने बड़ी भक्ति की थी, हमने भक्ति की थी। मुझे याद है 6 साल की उम्र में एक टांग पर खड़े होकर ध्रुव की तरह भी भक्ति की थी, भी भगवान के दर्शन हो, या अनजाने में एक पता था नहीं कुछ। तो जब मैंने कह दिया मैं आत्मा हूं, आप मानेंगे हूं कहने से बस अनुभूति शुरू होगी। बहुत खुशी हुई, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, लाइट फील किया, बॉडी लेसनेस हुआ, बाबा ने जैसे बुद्धि को पकड़ लिया। उस वक्त तो बाबा ज्यादा बिजी नहीं थे, बच्चे बहुत कम थे, बाबा को भी सर्विस करानी थी, एक दिन में ही सारा हमें अनुभूति करा दी। और हमने कहा भी और ज्ञान सुनाओ, ज्ञान सुनाता जाए, आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा शिव है, बंडर है। आप सोचो सारी दुनिया से पूछो, कोई नहीं समझता कि शिव जो शिवलिंग पड़ा है ये परमात्मा है। क्या कहेंगे, शिव शंकर भोलेनाथ, वो उल्टी बातें सुनाएंगे जो सुनने लायक भी नहीं है, है ना ऐसे। लेकिन ये ज्योति स्वरूप परमात्मा, ज्योतिर्लिंगम परमात्मा, बात पहले कहते थे ज्योति स्वरूप, ये परमात्मा की यादगार है। सारी अमरनाथ समय इतना जो हमारे मंदिरों में यादगार है, यही परमपिता परमात्मा है, किसी को मालूम नहीं है। अभी भी पूछो ऋषि मुनि साधु सन्यासी रामदेव से पूछो ये शिवलिंग क्या है, किसी को पता नहीं है। तो बाबा ने कहा ज्योति का स्वरूप ज्योति बिंदु, अब बाबा कहते हैं यही परमात्मा। ये सुन के बड़ी खुशी हुई, कि हमारे घर के पास एक मंदिर था वो दुख भजनेश्वर, वहां पर वो शिवलिंग था और वहां पर सांप वाम फिरते थे, हमें मतलब ये क्या है समझ नहीं आती थी। तो ये बात सुन के बड़ी खुशी हुई कि परमात्मा शिव है। यानी ज्ञान समझने के बाद बहुत चेंज आ गया, मेंटली सेटिस्फेक्शन होगी, आनंद आ गया वो। फिर उसके बाद सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, लोग इस पर मूंछते हैं। और सबसे अच्छा पॉइंट मुझे ये लगा, क्यों कि वो सृष्टि लीनियर, जो हिस्ट्री लीनियर नहीं है, ये बहुत एक होता है, ये साइक्लिक है। गीता में कहा है, देखो हम गीता सुनते थे पढ़ते थे, अर्जुन हम पहले भी थे अब भी हैं फिर भी मिलते रहेंगे, अनेक बार मिल चुके हैं। इस पॉइंट से बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। और फिर 5000 वर्ष पहले महाभारत हुई थी, फिर उन्होंने कहा देखो अभी यादव का और पांडव फिर से उपस्थित है, ये पॉइंट भी जच गया। जो भी बात सुनते जाए बहुत खुशी होती जाए, तुम 84 लाख यूनियन में नहीं जाओगे ये भी डर खत्म हो गया। तो कहने का मतलब है बाबा का इतना सुंदर ज्ञान सुनकर के बहुत ही आनंद आया। तो हमने कहा ये ज्ञान जो है कोई मनुष्य आत्मा नहीं दे सकता। आप देखिए महाभारत के बारे में देखिए, उसके रामायण के बारे में देखिए, कितनी बड़ी रामायण बनी हुई है और क्या क्या बातें उसके अंदर हैं आप जानते हैं। राम था, रावण था, सीता चुराई की, लक्ष्मण मूर्छित हुआ, भीष्म था, हनुमान पहाड़ी लेके आज था ना वो बूटी लेके आया, कितनी लंबी चौड़ी बातें हैं। और बाबा ने क्या कहा रामायण के बारे में बोलो, क्या कहा, एक सेंटेंस का क्या बोला बाबा ने। बाबा ने बोला बच्चे, मीठे मीठे बच्चे, रावण तो ऐसा कभी था ही नहीं, 10 सिर वाला, तो क्या हुआ सारी रामायण समाप्त। अगर रावण नहीं थी तो वो कैसे सीता चुराएगा। वो तो क्या बाबा कहता है कि टापू है सारी दुनिया, लंका यही है, ये कौन कह सकता है आप बताओ। इतनी बड़ी रामायण सारे शास्त्र बड़े पड़े, किससे पूछो। अभी वो अयोध्या में झगड़ा चल रहा है राम मंदिर का, बाबा ने कहा कि बच्चे राम तो कभी ऐसा था नहीं 10 सिर वाला। बाबा ने रामायण का 5 विकार नर के, 5 विकार नारी के, 10 सिर का रावण है, यही रावण है और घर घर में रावण है। अभी थोड़े दिन मुरली में आया था, बच्चे रावण में आत्मा नहीं है, था मुरली में कहीं एक, तुम तो सब आत्माओं में ब्राह्मण है। याद है कि नहीं, बाबा की मुरली में भी था थोड़े दिन पहले, बच्चे ब्राह्मण में कोई आत्मा नहीं है और सब आत्माओं में ही ब्राह्मण है। ये देखो कितनी, कौन कह सकता है ऑल मैटी अथॉरिटी के अलावा और कोई नहीं कह सकता। परिभाषा देखो रामायण की, ऐसे महाभारत की परिभाषा देखो, ये वो मारा मारी ये, और बाबा ने क्या कह दिया, बच्चे मैंने तो गीता ज्ञान को द्वापर में सुनाया नहीं। कब सुनाया? अभी गीता ज्ञान सुनाया जा रहा है। तो ये बातें सुन के बहुत बहुत प्रभावित हुए, खुशी हुई और निश्चय कर दिया बाबा से मिलने से पहले ही कि ये स्वयं भगवान का ज्ञान है और भगवान कार्य कर रहा है और मुझे तो वही कार्य करना है जो परमात्मा का कार्य चल रहा है। हम बता दिया, तो हमने उस भाई से कहा भी हमें ये ज्ञान आपको कहां से मिल रहा, हमें मिलाओ तो सही। तो हम मिलने के बाद आप पहले बाबा मामा से मिलने से एक बात सुनाते हैं आपको। हम बाबा मामा से मिलने चले गए, कहां दिल्ली में बाबा आए हुए थे, वहां जाना हुआ। तो रात्रि को पहुंचे और सवेरे, अब मैं शॉर्ट करता जाऊंगा, सवेरे बाबा मामा से मिले। क्या देखा बाबा मामा ने? जैसे के दो फरिश्ते बैठे हुए हैं, जैसे यहां आप जाएंगे ना, अभी तो दो गद्दी होती थी हाल में, और एक पर बाबा एक पर मम्मा बैठे, छोटी नीचे वाली गद्दी, दोनों बैठे थे। और बाबा को देखा, मम्मा को देखा, क्या पर्सनैलिटी थी। मैं समझता हूं बाबा मम्मा की, बाबा की पर्सनैलिटी इतनी जबरदस्त थी, आज तक मैंने कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं देखी। शाइनिंग चेहरा, 80 ईयर्स की एज थी, 80 साल की एज थी, चमकता हुआ चेहरा था और ब्रिचिंग आईज, आंखों में एक वो शाइनिंग थी, चमक थी, खींचने वाली थी, और मस्तक ललाट बड़ा उसमें लाली थी, और कद भी बड़ा वो था। और बैठे कैसे थे? अभी हम तो सोफे पर बैठे ना, वो तो ऐसे बैठे थे, पांव पे पांव रख करके बैठे थे और सीधे बैठे हैं इस एज में भी। तो उसको देख, उस पर्सनैलिटी को देख करके भी, उनसे मिल करके भी यही निश्चय किया कि ये ही वास्तव में हमारे अलौकिक परलौकिक परमपिता बाबा हैं बस। और मिलकर के बाबा ने पहला पहला जब गोद में गए, आंसू तो बह रहे थे, तो गोद में गए तो बाबा ने एक वरदान दिया। अब वरदान आप सुनकर के आश्चर्य कहेंगे, बाबा को तो मालूम हो गया था, क्योंकि उस वक्त इतने कम लोग होते थे और बच्चे भी कम पैदा होते थे, सब सारे परिवार को पता लग जाता था कि एक बच्चा निश्चय बुद्धि वहां पैदा हुआ है ऐसा। तो मालूम था बाबा को कि ये पटियाला से आया है। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, 4-5 साल की पढ़ाई है। बाबा ने कहा, बच्चे स्पष्ट कह दिया, विनाश तो सामने खड़ा है। तब भी कहा, उस वक्त 1957 में कहा, विनाश तो सामने खड़ा है, तो ये पढ़ाई तो काम आने वाली नहीं है, स्पष्ट कह दिया, ये पढ़ाई तुम्हारे काम ही नहीं आएगी। और मैं तो पहले मुझे वैराग था और ये कहा भगवान आया हुआ, उसका कार्य चल रहा है। मैंने कहा, ठीक है बाबा, आप कहते हो तो पढ़ने की क्या दरकार है। तो हम बाबा मामा से मिलकर के, सारे ईश्वरी परिवार से मिलकर के, जगदीश भाई थे, उस वक्त सेंटर्स बहुत कम थे गुजरात में, तो अभी मैं समझता अहमदाबाद भी बाद में खुला था, दादी जानकी जी ने अपनी बाद में, हाँ वो एक भाई निकले थे, अहमदाबाद भी नहीं था अभी, तो बम्बई में था एक दो सेंटर, पुणे में भी था और पंजाब में 3-4 सेंटर थे, दिल्ली में 2 सेंटर थे, बहुत कम सेवा केंद्र थे। भाई कितने होंगे, 1000-2000 मुश्किल से होंगे, मुश्किल से। तो सब परिवार से मिले, दादियां वहां थी, सब थी, सेंटर तो कम थे, सब बाबा के साथ थी। ऐसा देखा कि जैसे कि भागवत रिपीट हो रहा है। आई टेल यू, गोपी वल्लभ हमारा कौन है? शिव बाबा, ब्रह्मावतरण के में प्रवेश है, गोपी वल्लभ बाबा किसी को प्यार कर रहा है, किसी को टोली खिला रहा है, किसी को गोद दे रहा है। गोद कैसे लेते थे? चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, सब बाबा मम्मा की गोद में जाते थे। मम्मा के गोद में भी जाते थे, बाबा की गोद में जाते थे। और बाबा टोली खिलाता था, मम्मा टोली खिलाती थी। इस प्रकार से वो सीन देख करके यही हमने अनुभव होता था कि जो भागवत जो कहते हैं श्री कृष्ण की जगह ब्रह्मा है, बस उस वही आत्मा है, ये भागवत रिपीट हो रहा है। ऐसी हमने वो देख करके हमें कुछ और खुशी हुई कि देखो हम कहां पहुंच गए हैं। उसके बाद हम अपने वापस आया तो बाबा को एक लेटर लिखा इंग्लिश में, और बाबा ने भी अंग्रेजी में जवाब दिया। वैराग आ चुका था, मैंने बाबा जब आप कहते हैं कि विनाश सामने खड़ा है और दिखता भी है, उस वक्त भी कोई ना कोई विनाश की बात होती थी, कभी कुछ जैसे अभी है ना, कोई ना कोई विनाश होती थी, तो क्या पढ़ने की दरकार। अब लिखा लेटर, आई डोंट वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग एंड डिजाइन बिल्डिंग, बट आई वॉन्ट टू बी ए पार्ट ऑफ द ए स्टोन ऑफ द ह्यूज एडिफिस ऑफ द न्यू वर्ल्ड विच यू आर कंस्ट्रक्टिंग। एक बहुत बड़ा जो महल आप बना रहे हैं सत्यों की महल, उसमें मैं भी एक स्टोन बनना चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू डिजाइन हाईवेज एंड रोड, बट आई वॉन्ट टू रन ऑन द हाईवे गोइंग टू परमधाम एंड देन कमिंग टू गोल्डन एज। इस प्रकार से लेटर लिखा और भी लिखा था, तो बाबा ने भी दो लाइनों में जवाब दिया, चाइल्ड बच्चे इंग्लिश में जवाब दिया, बी पेशेंट एंड गिव दिस नॉलेज टू यूर को इंजीनियर्स एंड टू यूर फैमिली। ये बाबा का डायरेक्शन आया, तो हमने वही करने की वही शुरू किया करना, और सारे अपने स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर को जो मिलता था, जुनून था, एक मोमेंटम था, एंथ्यूजियाज्म था, सबको ये ज्ञान देना है। उन दोनों में चित्र निकले थे, जापान से छप के आए थे, त्रिमूर्ति और झाड़, वो फ्रेम करा के खड़े हो जाते थे होटल के सामने, आओ जी सुनाओ, जिसको जो मिलता था सबको सुनाते थे। स्कूलों में चले जाएंगे, वो नहीं चाहते थे कि हमें हम आपको सुनाने आए हैं, क्यों बाबा की मुरली में आता था, बच्चे जो ये इनको देख भी लेंगे ना, वो भी आपकी प्रजा में आ जाएंगे। तो हमें तो शौक था ये प्रजा बनानी है, तो सभी को सुनाते थे और ये ज्ञान को देने की कोशिश करते थे। किया अपने जो हम जिस हॉस्टल में रहते थे, वहां एक रूम था, उस रूम में दरी बिछाई, लाल बल्ब जलाया, उसमें लाल शिव बाबा भी नहीं होते थे, वो ग्रामोफोन लिया, रिगार्ड बजाया, अपने योग करना शुरू किया। तो वार्डन ने कहा भाई ये काम तो यहां नहीं हो सकता, तो हमने वो छोड़ करके अपने सेवा केंद्र खोलने की कोशिश की। तो सेवा केंद्र खुले, पटियाला में खुला, और जगह खुले, भिन्न भिन्न स्थानों पर, चंडीगढ़ खुला, हम सब पटियाला के कुमार थे, हमने मिलकर के सेवा केंद्र खोले। तो बाबा मुरली में कहते थे बच्चे पटियाला के कुमार बड़े वो हैं, चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, जो बाबा की वो थोड़ा भी काम करेंगे ना, आज तो रिट्रीट सेंटर खुले तो कोई वैल्यू नहीं है, माया थोड़ी बहुत वैल्यू, उस समय जिज्ञासु निकलना पहले पहली वैल्यू थी, फिर कोई छोटा मोटा सेंटर भी खोलो तो बाबा मुरली में नाम लेते थे, इतनी वैल्यू होती थी उस सेवा की। इस प्रकार से चलते रहे, तो बाबा ने कहा बच्चे बहुतों को ज्ञान देने की कोशिश की, दादी जानकी जी भी आए, हमने निमंत्रण दिया, तुम्हारे जो जो हमने कमरा लिया था तो आए, वहां पर हम खुद ही खाना बनाते थे, मैं और ओम प्रकाश खिलाते थे, वो भी हीटर पर होता ना, वो तो था नहीं, उन्होंने स्टोव वगैरह पता नहीं था नहीं, तो दादी आया देखा तो बड़ा उनको तरस पड़ा, उन्होंने मेरे को दो तीन दिन खाना बना के खिलाया। तो वो अभी दादी जब भी क्लास में बैठो सामने कहती है देखो आतम आपको हमने खाना बना के खिलाया था, वो कहती है, मैंने कहा दादी आप मेरे मौका दो मैं भी खाना बना के खिलाऊ आपको, ताकि वो जो हिसाब किताब हो जाए, ऐसे हंसी में कहते दादी हम भी खिला सकते बना करके। तो बार बार क्लास में कहती है बस मैं आई थी, ओम प्रकाश आतम प्रकाश थे, उनको खाना बना के खिलाया था। इस प्रकार से वो सेवाएं चली, सेवा करते रहे, सेंटर खुलते चले। फिर हम लौकिक घर में गए, अब बाबा ने दूसरा संदेश दिया था लौकिक घर वालों को ज्ञान दो, तो लौकिक घर में गए तो हमने तो माता जी पिताजी जो लौकिक थे, भाई बहन सबको ज्ञान सुनाया, हमें कोई डर नहीं था किसी का, हमारी फैमिली का ऐसा सिस्टम था कोई किसी को डर नहीं है, जो बात है कह देनी। तो भगत था, भगत फैमिली तो थी, सबको ज्ञान अच्छा लगा। हमारे लोग हमारे लौकिक फादर कहे बात तो बिल्कुल ठीक लगती है, बड़ी जचती है बात, परंतु एक मुझे शर्त है मेरी, अगर आपका बाबा मुझे कुछ दिखा दे, यानी साक्षात्कार करा दे, तब मैं फौरन ज्ञान को मान जाऊंगा। उनने शर्त रख दी। मैंने कहा पिताजी मैं मुझे तो साक्षात्कार हुआ नहीं, मैं तो दादियों से मिला हूं, बाबा से मिला हूं, सबसे मिला हूं, आप तो भी किससे मिले भी नहीं, और कैसे आपको बाबा कराएगा। उसने कहा अगर स्वागत कराया तो तब मैं चलूंगा, ज्ञान में चलूंगा। तो फिर हम क्योंकि गांव में गए थे भोग लगा रहे थे गुरुवार को, तो वो बैठे थे, बैठे बैठे उठ के खड़े हो गए वो, ये मैं रियल सीन बता रहा हूं, खड़े होकर वो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते, कभी यहां पकड़ते हैं, कभी यहां पकड़ते हैं, कभी यहां पकड़ते हैं, किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके हाथ में नहीं आती। ये था सीन। और कुछ समय के बाद वो नीचे उतरते हैं, बड़े उदास, बहुत उदास। मैंने कहा आई वॉज हैप्पी, कुछ हो रहा है, कुछ समथिंग इज हैपनिंग। तो मैंने पूछा क्या हुआ जी, कहते मैं कहीं ऊपर गया, पता नहीं कहां गया, तो वहां पर बहुत छोटा सा बच्चा श्री कृष्ण मेरे सामने आया। मैं उसको पकड़ता हूं तो यहां पकड़ू तो वहां चला जाए, वहां पकड़ू तो वहां चला जाए, मेरे हाथ में ही नहीं आया। मैं कहा फिर उदास हो गया बहुत। फिर आपके बाबा जो है धोती वाले ये आए, उन्होंने कहा बच्चे जब तुम निश्चय बुद्धि बनोगे, इस ज्ञान को मानोगे, धारणों पर चलोगे, सब खान पान ठीक करोगे, श्री कृष्ण तब तुम्हारी गोद में आएगा। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा हाँ जी जो आपको सब मैं करने को तैयार हूं। तो एज तो अभी 50 के करीब थी, लेकिन फिर भी जो धारणा थी सब उन्होंने धारणा शुरू कर दी, लहसुन प्याज सब छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। और उनको मैंने लिख दिया योग का, मैं आत्मा हूं शिवा वो जो उतना सारी कमेंट्री मैंने लिख दी। और वो अपनी हमारी खेती थी 40 एकड़, वो खेत में जाए अंदर अंदर बोलते जाए वो ये याद करते जाए भी ये आत्मा हूं बाबा का बच्चा हूं ये वो बोलते जाए और चलते जाए। तो योग चलते फिरते भी करते रहे। फिर अगले गुरुवार फिर हमने कहा चलो भोग लगाते हैं, बैठे फिर वो ध्यान में चले गए। ध्यान में जाकर के श्री कृष्ण को देखा, श्री कृष्ण उनकी गोद में आया, उन्होंने बहुत प्यार किया, बहुत आंसू उसके हैं, जैसे उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। हम बताएं हमारा बाबा जो है बड़ा मीठा बाबा है, भक्त वत्सलम है, हम बता दें वो भक्तों की भावना भी पूर्ण करता है। ये देखा मैंने, वो बहुत बड़े भगत थे। वो भागवत पुराण जो होता है ना हमारा, एक कथा वो है, शास्त्र है, बड़ी किताब है भागवत पुराण, उसमें ध्रुव की, प्रहलाद की, नरसिंह की, सारे 24 अवतारों की कहानियां वो बहुत पढ़ते थे। वो रात रात सुनाते थे जाकर इस मोहल्ले में उस मोहल्ले में, वो हकीम थे वो, तो बहुत सुनाते थे। उनको श्री कृष्ण से बहुत प्यार था। जब वो ज्ञान में जब उनको ये साक्षात्कार हुआ तो सारे लोग भी, गांव वाले भी हैरान और हमारे लौकिक परिवार वाले भी हैरान, तो सारे परिवार वाले ज्ञान में आ गए। जैसे बाबा ने कहा था अपने लौकिक परिवार की सेवा करो, तो वो बाबा का फरमान भी हमने पालन किया और पूरा परिवार 8 व्यक्ति हम जो थे इस ज्ञान में चलने लगे। तो हमारा लिए और इजी हो गया, बहुत अच्छा हुआ। तो हमने बाबा को लिखा, बाबा हमारा लौकिक फादर ध्यान में जाता है। मैं तो बड़ा खुश था। तो बाबा का लेटर है, बच्चे मैंने भी ध्यान बहुत देखा है। मतलब बाबा ने कोई इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं दी, लेकिन वो इतने एक्यूरेट ध्यान में जाते थे। हम उनसे के बाबा से पूछ के आओगे संदेश, वो पूछ के आते थे। बड़ा मैं कमाल है। फिर जब वो बाबा से मिले, मम्मा से मिले, यहां आके रहते थे तो मम्मा उनको बिठाती थी गद्दी पर, जाओ बाबा को भोग लगाओ। इस प्रकार से उसके ज्ञान में आने से, ध्यान में जाने से हमारे लौकिक परिवार की सेवा हुई। और हम भी जैसे कैसे तैसे हम भी इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ते रहे, कोई विद डिसइंटरेस्ट, कोई मेहनत नहीं की, क्योंकि कभी बाबा आ रहे हैं, कभी मम्मा आ रहे हैं, कभी प्रदर्शनी है, कभी कुछ स्टॉल ले रहे हैं, कभी ये है, कभी कुछ है। तो ज्यादा हमारा इंटरेस्ट इधर था, ज्ञान योग में, इस सेवा में, कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। मिस करते थे लेक्चर्स, क्योंकि कभी कुछ। फिर भी पता नहीं कैसे, विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी स्टडी, आई पास द इंजीनियरिंग। 4 साल में इंजीनियरिंग 5 साल में पास कर ही ली। तो देखो मैं सच कहता हूं, कोई इंटरेस्ट नहीं। अब मुझे पता नहीं मैंने क्या पढ़ा था, सच ही कहता हूं। आई डोंट नो व्हाट आई, मुझे पता भी नहीं, हम जैसे काम आए नहीं, जो बाबा का वरदान था कि बच्चे ये पढ़ाई काम नहीं आएगी तो आई भी नहीं। तो बीच में आते थे मधुबन में बाबा मामा से मिलने के लिए। मैं एक और सुनाता हूं एक कहानी बाबा की। उस समय कुछ भी यहां बिल्डिंग नहीं थी जब पहली दफा मैं, ना हिस्ट्री हॉल ना ये हॉल ना कोई सिवाय जो टीन का है ना छप्पर बीच वाला जहां यीशु दादी का ऑफिस है, केवल यही था। और बाहर में कोई टीन डाल करके खाना वाना बनता था, बहुत लोग कम होते थे, ज्यादा लोग भी नहीं थे। जब हम आते थे मैक्सिमम क्लास 20-25 की क्लास होती थी, 30 की क्लास होती थी। और वो यहां बैठते थे टाट बिछा के, वो जो पहला बिल्डिंग है और यीशु दादी के ऑफिस के आगे तक बाबा मम्मा की गद्दी होती थी। आकर के पहले मम्मा आती थी, फिर बाबा आते थे, मुरली चलाते थे, फिर मुरली के बाद बाबा अपने कमरे में जाते थे, जहां आप कमरा देखो आगा आपने चार पाई पड़ी है ना, वो चार पे फिर बाबा बैठ जाते थे टागे नीचे करके। और सारे बच्चे जो 10-20 बच्चे होते थे वो चिट चैट करते थे। बाबा पूछेंगे, बाबा जब मुरली चलाते थे मुरली के बाद बड़ी फोर्स होती थी, बहुत जबरदस्त, यानी जब धीरे 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 बाबा जैसे नीचे उतरते ऐसा लगता था। मैंने देखा एक दफा, मैंने कोई बाद में उस मुरली के बाद बाबा से मिलने गया तो बाबा ने कुछ जवाब नहीं दिया, यानी ही वॉज कमिंग डाउन, जैसे धीरे धीरे जैसे ना अवतरण होता है तो वो अपने सानी व्यक्त अवस्था में आ रहे हैं, ऐसा बहुत टाइम लगता था उनको। तो बाबा आते थे, चिट चैट करते थे, बच्चों को बहलाते थे, ऐसे करते थे। उसके बाद फिर बाबा घूमने जाते थे सब बच्चों को लेके, ना नाश्ते से पहले ये यहां सीधे नक्की लेक की तरफ, बाबा आगे आगे और बच्चे पीछे पीछे उनके चलते थे। तो एक दफा मैं आया तो जो ये है ना अभी जहां भी शांति स्तंभ बना हुआ वो तो खाली था सब कुछ, कोई कोई कमरा नहीं था, कोई ट्रेनिंग हॉल वगैरह कोई ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं था। बाबा खेल रहे थे, बच्चों को खिला रहे थे। क्या खेल रहे होंगे बताओ? क्या क्रिकेट खेल रहे थे वो? वो नहीं, बैडमिंटन नहीं, बैडमिंटन बाद में खेलना शुरू किया, पहले क्रिकेट भी खेलते थे। तो दादा बैठते उनको बाल फेंकते थे वो लगाते थे, बच्चे पकड़ते थे, हंसते थे, बैलते थे, सब होता था। तो मैंने एक फोटो लेने की कोशिश, मैंने कहा बात इस 81-82 ईयर्स की एज है और बाबा देखो ये खेल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है ये। तो मैंने फोटो लेने की कोशिश की, बाबा ने कहा नो फोटो। और मेरे से खेल बंद करके कहा, बच्चे क्यों फोटो लेते हो? देखो बाबा के माँ बाप के देखो क्या, बच्चे मेरा फोटो तो आएगा नहीं। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा की आत्मा को फोटो तो नहीं आएगा कि बच्चे मेरा फोटो तो आएगा नहीं। और ये शरीर छीछी है, बाबा हमेशा शरीर को पीछे रखते थे, हमेशा अपने शरीर को कहता कि इसमें कुछ नहीं है। इतना वंडरफुल ब्यूटीफुल शरीर था, अच्छा साधारण नहीं था। मैं बताऊं आपको, बाबा का तन भी असाधारण था, फिर भी कहते बच्चे इसमें कुछ रखा नहीं है, क्या उसको याद करो जब घूमने जाए। अच्छा मैंने कहा ठीक है बाबा, आप कहते तो है बात तो ठीक है, शरीर का फोटो आएगा, आत्मा का शिव बाबा का तो फोटो आएगा नहीं। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे ले लो फोटो जैसे मर्जी है, लिया हमने। फिर हम जब जाते थे बैग नक्की लेक पर, बाबा पीछे होकर देखेंगे किसके साथ घूम रहे हो, बाबा पूछेंगे घूम किसके साथ घूम रहे हो, कौन है, किसके साथ जा रहे हो? बच्चे कहते हैं शिव बाबा के साथ। खाना खाने बैठेंगे, बीच में कहेंगे बच्चे किसके साथ खा रहे हो? बाबा शिव बाबा के साथ। बार बार वो अपने को पीछे करके शिव बाबा को याद कराते थे, ये बाबा हमेशा करते थे। कुछ भी काम होगा बाबा हमेशा शिव बाबा की याद कराते थे, कहता उसको याद करो, उससे भी कर्म विनाश होंगे, इस शरीर को याद करने से कुछ नहीं होगा। कोई माताएं कन्या बाबा से मिलती थी, किससे मिल रहे हो पूछता था बाबा, तब माना गोद में। अगर शिव बाबा को याद करके नहीं आए तो ठीक नहीं है, शिव बाबा को याद करके मिल रहे हैं। तो बाबा बार बार शिव बाबा को याद कराते थे, तो ये देख के बड़ा आनंद आता था, बड़ा मजा आता था। ऐसे चलते रहे चलते रहे, फिर हम इंजीनियरिंग पास करके लोक माता पिता के साथ हम आए यहां पर मधुबन में आए। भाई अब इंजीनियरिंग पास कर लिया, तो बाबा ने कहा मैंने तो कहा था तुम्हारी पढ़ाई काम नहीं आएगी। तो मुझे उसी दिन से बाबा ने सर्विस पर भेज दिया दिल्ली में। भ्राता जगदीश जी को जानते हैं आप? कोई जगदीश भाई को जानते हैं आप? जानते हैं आप खड़ा करें? कम जानते हैं। हमारे जगदीश भाई जी थे जो लिटरेचर लिखने वाले, जो उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को एक रूप दिया, एक स्टेटस दिलाया अपनी पुस्तकों से, लिटरेचर से, लेखनी से। उनकी 200 किताबें लिखी हुई है। उनके पास गए, हमें उन्होंने ट्रेनिंग दी, वो किया। फिर धीरे धीरे करते जब ये पदस्थी बनी, बॉम्बे में इन्वेंशन हुई, तो हमने फटाफट उसको कॉपी करके हमने आर्ट, हमें लौकिक कुछ मिला था, उसको चित्रशाला खोली, 4-5 आर्टिस्ट एम्प्लॉय किए, चित्र बनवाने शुरू किए। तो हम एक बार 20 चित्रों का सेट लेकर के, जब हिस्ट्री हॉल बन चुका था, अब 65 होगा शायद, उस समय हम बाबा के पास आए चित्र लेकर के। देखो एक और वरदान बाबा ने जो दिया जिससे बहुत सेवा हुई, 20 चित्रों का ऑयल पेंटिंग लेके आए। बाबा और दीदी या मम्मा सारा आके देखा, अच्छा लगा, दिल आकर फिर मुझे बुलाया अपने कमरे में। बाबा कमरा देखते ना आप लोग, वहां एक गद्दी पड़ी है, एक चारपाई है ना, और नीचे खाली है। अब तो बाबा का चित्र रख दिया वो ट्रांसलाइट। तो मैं नीचे बैठने लगा, बाबा ने कहा नहीं बच्चे मेरे साथ गद्दी पर बैठो। कौन बोला? शिव बाबा और ग्रेट 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 ग्रैंड फादर ब्रह्मा बाबा कह रहा बच्चे मेरे साथ बैठो। मैं तो संकोच कर रहा था, फिर भी बाबा ने कहा बैठो। मैं बैठ गया। फिर तो बाबा ने फिर एक वरदान दिया। बाबा ने कहा बच्चे जो बाप की गद्दी सो किसकी? बच्चों की गद्दी। ये बाबा ने कहा यहां भी और वहां भी। वहां कहां बोलो? कहां है? परमधाम में, सत्युग में। एक था ना मुरली में, बाप बच्चे बाप पर जीत पाते हैं, यानी बाप पहले हमारे बाबा मम्मा पर फर्स्ट लक्ष्मी नयन बनेंगे तो आगे आप बच्चे बनेंगे ना, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कितनी मार्जन है और कई कितनी राजाई है, सारा भारत है। तो ये वरदान सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई, खुशी तो हुई, उमंग उत्साह बहुत भरा, बहुत उमंग उत्साह भरा। तो आप मानेंगे इसी वरदान से इतना काम किया, सैकड़ों प्रदर्शनियां बनी, म्यूजियम बने, मेले बने ऑल ओवर इंडिया में। चित्रशाला छोटी सी हमारी, उस वक्त हाथ से चित्र बनते थे, कंप्यूटर से नहीं बनते थे, बना बना करके सेवा में बहुत वृद्धि हुई। तो बाबा ने इस कार्य के लिए निमित्त बनाया। हमें खुशी होती है कि जो सेवाएं जो बड़ी है प्रदर्शनी से, उनमें हमारा भी एक पार्ट था। और बाबा के इन महावाक्यों से, इन वरदानों से हमें वरदान मिला। चलते रहे, चलते रहे इस प्रकार से। अब तो काफी समय बीत गया, देखो कितने 61 साल हो गए। कहां से चले थे? 57 से, और अब 18 भी पहुंच गया, आधा हो खत्म होने वाला है। अब उसके बाद अब तो टाइम बिल्कुल नजदीक है। अब आया क्या है? बाबा कहता ना सत्यु कितनी दूर है हमारे से, बोलो साढ़ पंथ। बाबा कहता है जैसे नहीं किसी जगह आवाज लगाओ, आवाज पहुंच जाए और वहां से भी आवाज आ जाए, अब सत्यु गोल्डन एज दूर नहीं है। और हमारा लक्ष्य क्या है बोलो? क्या लक्ष्य है बोलो भाइयों? अब नया पार्ट शुरू होता है। अब बाबा का अनुभव थोड़ा सुना दिया, बातें तो बहुत है, लेकिन आगे फिर क्या है, बनना क्या, हमने बाबा जैसा बनना है, लक्ष्य क्या है हमारा बोलो? क्या बनना है? बाप समान कर्मातीत फरिश्ता बनना है। ठीक है, क्या बनना है? बाप समान कर्मातीत फरिश्ता, ये है हमारा लक्ष्य ब्राह्मणों का। हम सभी ब्राह्मणों का लक्ष्य है कर्मातीत फरिश्ता, बाप समान बनना। तो कहां तक बने हैं ये भी बताइए, कितने परसेंटेज बन गए बोलो? 90%, 80%, 100% बोलो जी, कोई तो बोले कितना बन गए बाप दाओ माता? 50%, बहुत दूर अभी तो, इतना टाइम बीत गया। कितने परसेंट बने भाई, कोई और बोले? कोई 90% बन गया हो तो नहीं, बहुत टाइम, बहुत नजदीक तो पहुंचे नहीं। तो कैसे नजदीक, फासला कम कैसे होगा ये बताओ? कर्मातीत फरिश्ता बनना है हमने भाई, फरिश्ता। बाबा देखो बाबा बन गए, मम्मा बन गए, अपने हिसाब किताब चुप चुप कर खत्म हो गए। लेकिन हम कैसे बनेंगे फरिश्ता? पहले फरिश्ता कर्मातीत बनने की पहली स्टेज क्या है? बोलो पहली स्टेज क्या है? हैं? वो तो जान चुके, वो ज्ञान तो मिल गया आपको भाई। अब वो तो पहली, तो उसके आगे बताइए ना, पहली स्टेज क्या है? देखो मैं बता दूं, टाइम कम है, मुझे थोड़ा और 5-7 मिनट लगेंगे। पहली स्टेज है विकर्माजीत, सुना? नो विकर्म। अब ब्राह्मणों से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है? है ये पहली स्टेज के नहीं, फर्स्ट बड़ी ये क्रूड है, ये कोई बड़ी लंबी मोटी बात है, ये कोई ये सूक्ष्म बात नहीं। विकर्म ना हो, पाप ना हो, पाप कर्म। बाबा जी क्या कहता है, मेरा नाम बदनाम ना हो। आज मुरली में था, रोज 2-3 दिन मुरली में आ रहा है। ऐसा पाप कर्म नहीं होना चाहिए, वो तो अब नहीं होता होगा ना। बाबा को आदत है कि मेरे ब्राह्मण जो है बच्चे विकर्माजीत तो बन गए, ठीक है? बन गए हाँ या ना बोलिए, बन गए? बोलो वाह। अभी कई जो हाथ खड़ा नहीं करते, जो बने हाथ खड़ा करे, बहुत नहीं करते। विकर्माजीत तो बन ही जाना चाहिए अब तक, तो पाप ना हो ना। कोई हमारे बाबा कहते थे पहले, चलो विकल्प आता है तो चलो पाप कर्म में मत आओ, वो भी अब बहुत पुरानी बात होगी। पहले तो ये देखो, मेरे से सारे दिन में जब तक, जब से ज्ञान में आया हूं, कोई पाप कर्म तो नहीं हुआ, न मैं करूंगा, और नहीं होता होगा। या आप पता नहीं क्यों समझते नहीं, आप पाप कर्म थोड़ा करते हैं, कोई पाप कर्म नहीं होता, उसे कहते हैं विकर्माजीत। सेकेंड स्टेज कौन सी है? बोलो सेकंड स्टेज। चलो मैं ही बताता हूं, विकल्पाजीत। विकल्प नहीं आना चाहिए कभी। अब अगर बाप समान बनना है, कर्मातीत फरिश्ता बनना है, तो विकल्प बिल्कुल बंद। मन में कोई, बुद्धि में कोई गलत संकल्प, दृष्टि में अपवित्रता, नॉट एट ऑल, ठीक है? इसमें भी पास होंगे, पास है इसमें, हाँ हाथ खड़ा करो, नहीं बहुत कम कर रहे हैं, पास होना चाहिए। बाबा ने बड़ी मेहनत हम बच्चों पर की है। बाबा देखो सारी सारी रात अगर बाप दादा ने मेहनत हम बच्चों पर की है, कितनी मेहनत की, हम उस मेहनत को देख करके हमारे आंखें भर आती है, कितना मेहनत बाबा ने की है। तो नाउ नो विकल्प, ठीक है? ये भी खत्म। थर्ड कौन सी स्टेज है फिर? थर्ड स्टेज है व्यर्थ अतीत। व्यर्थ नहीं चाहिए, बाबा कहते हैं व्यर्थ भी नहीं चाहिए। व्यर्थ क्या किसे कहते हैं, क्यों क्या क्या ये सब ये है ना, ये व्यर्थ है। साथ में अभी भी देखो, अभी आप बैठे हैं, आपको किसी बैर का संकल्प आ गया या किसी शहर का संकल्प आ गया, जिस संकल्प की कोई अभी वैल्यू नहीं, वो आना भी व्यर्थ है, नेक्स्ट स्टेज है। हमने दादी गुलाट जी ने क्लास कराई थी, ये क्यों क्या तो है ही व्यर्थ, लेकिन ये भी व्यर्थ है कि जिस वे कोई संकल्प नहीं चाहिए वो आ जाए, बेकार का टाइम वेस्ट जा रहा है। तो व्यर्थ अतीत भी खत्म, व्यर्थ अतीत भी बनना है, नो व्यर्थ। ये पुरुषार्थ करना है, मेरे भी व्यर्थ ना हो। और फोर्थ स्टेज क्या है? साधारण अतीत। हम बाबा मम्मा को देखते थे, कमाल है उनका, हर एक संकल्प, हर एक बोल, हर एक कर्म और हर एक कदम विशेष था। हम बता दें आप, बाबा किसी को जो संकल्प तो था ही विशेष, सारी दुनिया के लिए, दुनिया का कल्याण करना है, सबका कल्याण हो, सबके प्रति शुभ भावना, ऐसा संकल्प तो था ही। उनके बोल, किसी से के प्रति बोल देंगे, कितनी सेवा हो जाएगी, विशेष बोलते, व्यर्थ बोल नहीं थे, हमेशा विशेष बोल। उनका किसी को ऐसे हाथ रख देंगे, वाह वो फूला नहीं समाएगा, क्या मुझे क्या मिल गया। तो हम बच्चे अगर बाप समान बनना चाहते हैं, तो हमारा भी हर कदम, हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प समर्थ चाहिए, विशेष चाहिए, व्यर्थ नहीं चाहिए, साधारण भी नहीं चाहिए। तब तो बाप समान बनेंगे। कहां बाप समान, आदि देव समान, एडम समान, ब्रह्मा बाबा समान बनना है तो ये हमारे संकल्प चाहिए। तो कैसे वो साधारण की देखिए, जो जो है ना व्यर्थ से टाइम वेस्ट होता है और साधारण से भी टाइम वेस्ट होता है। आपने जैसे न्यूट्रल, साधारण में न्यूट्रल, आपने वो स्कूटर स्टार्ट कर दिया और न्यूट्रल पर रख दी वो चीज जो होती है मुठियां, तो ना स्कूटर आगे जाए ना पीछे, और बीच में खड़ा रहेगा और पेट्रोल चला जाएगा, जाया जा रहा है। तो हमारे बहुत संकल्प साधारण है, नथिंग, कुछ है ही नहीं। मानो अभी आप ऊपर से नीचे आ रहे थे, नीचे से ऊपर आ रहे थे, क्या सोच रहे थे आप? क्या शुद्ध संकल्प था कि साधारण संकल्प था, या कोई संकल्प नहीं था? अभी जो हमारे ब्राह्मण, मैं ये समझता हूं, हमारा भी है, आप मैं बन नहीं गया हूं, हम ब्राह्मणों का जो है टाइम नथिंग में जा रहा है, भले विकल्प ना हो, व्यर्थ भी ना हो, लेकिन इट इज गोइंग इन नथिंग। हम कुछ सोच ही नहीं रहे। बाबा कहता है जो नथिंग है, जो साधारण है, उसको कन्वर्ट कीजिए समर्थ में, बस ये है पुरुषार्थ। जो जो हमारा संकल्प कुछ नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है उसकी, उसको पॉजिटिव कीजिए। देखिए विकल्प से एनर्जी, वो आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। सुन लो, आपने बैटरी अभी चार्ज की, विकल्प आया तो बैटरी डिस्चार्ज होती है। अगर आप शुद्ध संकल्प करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, बैटरी चार्ज होगी, पावर आएगी और प्योरिटी आएगी। कौन से पॉजिटिव संकल्प? पॉजिटिव, कोई भाई नया सोचने की दरकार नहीं है, कोई नई नई बातें सोचे, भले सोचो, हम तो जो बाबा ने पुरानी बातें बोली हम वही सुनाते हैं जो मुरली में आती है। सबसे बड़ा बढ़िया संकल्प कौन सा है? पॉजिटिव संकल्प, बोलो कौन सा है, बोलो। मैं शुद्ध आत्मा हूं, पहला गोल्डन संकल्प तो यह है, शुद्ध हूं। ये आई इज वन, ये गोल्डन संकल्प है फर्स्ट। फिर बिंदु लगाओ, शुद्ध हूं, शांत हूं तीसरी बिंदी, श्रेष्ठ हूं चौथी बिंदी, लाइट और माइट हूं, कर्म इंद्रियों का राजा हूं। ये सारे जो संकल्प है शुद्ध संकल्प है। गो ऑन एडिंग एंड एडिंग, तो एक से दस, दस बीस, सौ, ऐसे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। यानी आप एडिशन कर रहे हैं शुद्ध संकल्पों के अंदर, पॉजिटिव संकल्पों के अंदर, जिससे आपको पावर मिलेगी और प्योरिटी मिलेगी। हमको पावर मिलती है, प्योरिटी मिलती है। तो सात्विक में क्या चाहिए? दो पावर चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण को दो पावर है, क्राउन ऑफ लाइट प्योरिटी और क्राउन ऑफ माइट पावर। वो इन शुद्ध संकल्पों में रमण करने से मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। और बाबा ने बहुत तरीके बताए हैं। एक दफा दादी गुलदागी से मैं बैठा था, मैं दादी देखो इस दफा बाबा ने जो कहा है ना, 500 रूपों को याद करो, ये तो बड़ा आसान है। हम तो 8 बार क्या, हम 10 बार भी 20 बार भी याद कर सकते हैं। दादी ने कहा बात तो ठीक है, परंतु ये भी करो और बिंदु रूप को भी याद करो, दोनों करो, केवल यही नहीं, ये भी करो। अच्छा है, शुद्ध संकल्प में रमण करना भी अच्छा है, ऐसे पावर मिलती है, प्योरिटी आती है। साथ साथ अपने को आत्मा समझ बाबा के पास पहुंच जाओ और शिव बाबा को जो सत्यम शिवम सुंदरम सदा सुंदर है, उसको देखते रहो, देखते रहो उसको, या उससे लाइट माइट लेते रहो, वो भी करो। तो इससे क्या है, अपने जो शुद्ध संकल्प में रमण करेंगे तो दोनों चीजें मिलेंगी। देखो बाबा हमेशा बार बार कहते हैं क्या करो, देवी अभिमानी बनो, आज भी हर मुरली में कहते हैं, अशरीरी बनो, फरिश्ता बनो। तो कैसे बनेंगे? देखो शिव बाबा ने एक बड़ा भारी सिद्धांत दिया है जो किसी दुनिया में नहीं दिया। कैसे बना जाता है बताओ, अशरीरी कैसे बनेंगे बोलो? बनना मीन यानी जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, ये ला है, ये भगवान ने ला बताया है जो हमारी दुनिया में नहीं। वो कहते जैसा करोगे वैसा पाओगे, वो तो है ही ठीक। बाबा ने कहा है बच्चे जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जिसे योगा, जैसा आप संकल्प करोगे वैसा बनते चले जाओगे। तो हम क्या कहते हैं, अशरीरी बनो मीन्स मैं आत्मा हूं, ये सोचो, बाबा का हूं, یعنی یہ ساری باتیں جب سوچتے جاؤ گے تو آپ وہ بنتے جاؤ گے, بار بار سوچیں گے تو انت میں آپ بن ہی جائیں گے. تو دیکھو نا بابا ایک دفعہ مثال بھی دیتے تھے, ایک دفعہ مثال دی تھی ابھیکت باپ دادا نے بھی دی تھی اور ساکار بابا بھی دیتے مثال سناتے ہیں کہ ایک گاؤں والا تھا ان پڑھ تھا, اس کو منتر لینے گیا گرو سے, میں جلدی سناتا ہوں لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا کیا منتر ہے کیسے منتر ہے. گرو جی نے کہا تم اپنے کمرے میں بیٹھ کے تم کس سے پیار ہے, کہ مجھے تو بھینس سے پیار ہے. تو انہوں نے کہا تو بھینس کو یاد کر. تو وہ بھینس یاد کمرے بند کر کے بیٹھا یاد کرتا رہا کچھ دنوں کے بعد کہتا ہے کچھ سمے کے بعد اوہو میں تو بھینس بن گیا ہوں, میرے تو سینگ آ گیا, میں باہر کیسے نکلوں. تو یہی سدھانت ہے کہ جیسا سوچو گے ویسا آپ بن جاؤ گے. میں آتما ہوں, شدھ ہوں, شانت ہوں, شیتل ہوں, شریشٹھ ہوں, شکتیشالی ہوں, گیان سوروپ ہوں, پوتر سوروپ ہوں, جو گوڑ ہے ہمارے آٹھ, شانت سوروپ ہوں, پریم سوروپ ہوں, سکھ سوروپ ہوں, آنند سوروپ ہوں. اس کو بار بار یاد کرو. یاد کریں گے ایک دفعہ کہہ دیا میں آتما ہوں, شدھ آتما ہوں, بس آنکھیں بند کر کے بیٹھ کے جھٹکے کھاتے رہے تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ہم بتا دیا آپ کو, بابا نے کہا ہے جب تک ریوائز نہیں کریں گے تو کیا نہیں ہوگا, بولو بھگوانو واچ. ریوائز نہیں کریں گے تو کیا نہیں ہوگا, بولو ریئلائز نہیں ہوگا. سن لو, ریوائز کرو تو ریئلائز ہوگا, سمجھے. تو بابا کہتا ہے یوگ سہج بھی ہے, یاد کرنا بڑا سہج ہے. پھر بابا کہتا ہے اس میں محنت تو بہت ہے. مرلی میں آتا نا کئی دفعہ اوپر ایک پیرے میں آئے گا, بچے یوگ کیا ہے. ہماری دادی گلزار جی ایک دفعہ سنا رہی تھی یوگ کیا ہے, ناچو گاؤ خوشی مناؤ, یہ بولا اس نے. اب میں نے کہا دادی کیسے ناچو, میں نے ایک بدھ روپی پاؤں کو ایک دفعہ پرم دھام میں لے جاؤ, دوسرا پاؤں ستیوگ میں لے جاؤ, تیسرا پاؤں اس میں وہ سکھ سمتن میں لے جاؤ, یہ ناچنا ہو گیا. گانا کیا ہے, بابا کے گن گاؤ, بابا آپ تو گیان کے ساگر ہیں, پوترتا کے ساگر ہیں, شانتی کے ساگر, بہت میٹھے ہیں, بہت پیارے ہیں, مجھے کیا سے کیا بنا دیا. بابا کے گن گاؤ, ٹھیک ہے, ناچو کیا, بدھی کو گھماؤ ایک جگہ, ٹھیک وہ مت بیٹھو. اور دوسرا گاؤ, میں نے بابا کے گیت گاؤ, مہما کے گیت گاؤ, اور خوش تو آپ ہو ہی جائے, خوشی تو منانی ہے, ناراض تو ہونا نہیں ہے. تو یہی تو تھا دادی کہتی یوگ ہے, اور کیا یوگ ہے. تو بہت اس کو یوگ کو بہت مشکل مت کرو, بڑا سمپل ہے. اپنے کو یاد کرو, بابا کو یاد کرو, گھر کو یاد کرو, اپنے گنوں کو یاد کرو, بابا گنوں کو یاد کرو, پراپتی کو یاد کرو, بابا کی مہما کرو, اور پھر بندو بن کے بندو کو بھی یاد کرو. میں آتما پرام دھام میں بیٹھ کر کے سامنے شیو بابا جو ستیم ہے, شیوم ہے, سدا سندر ہے, اس کو یاد کرو. بابا کو سمبندوں سے یاد کرو. ہم تو نو سمبندوں سے یاد کرتے ہیں, میں بتا دیتا ہوں, ٹائم ہو گیا. نو سمبند کون سے ہیں؟ پہلا سمبند کون سا ہے بتاؤ, کیا ہے؟ نو پہلی ہماری ماتا ہے. بابا جو ہماری ماتا ہے, کیا گیان دودھ پلا کے رشت پرشت بنا دیتی ہے, طاقت بھر دیتی ہے. دوسرا سمبند ہے پتا کا, وہ داتا ہے. پہلے ماتا ہے پھر داتا ہے. کیا دیتا ہے ہمیں؟ سویٹ ہوم اور سویٹ راجدھانی کا ورثہ دے دیتا ہے. تیسرا کیا ہے؟ بھاگیہ بھی داتا ہے, ٹیچر ہے, 21 جنموں کے لیے اتنی راجائی دیتا ہے ہمیں. اور چوتھا ہے ورداتا ہے, پردان دیتا ہے, آشیرواد دیتا ہے, پالنا کرتا ہے وردانوں سے. پانچواں ہمارا ساتھ نبھاتا ہے, کون؟ ایز اے فرینڈ, ہمارا دوست ہے, انفیلنگ فرینڈ ہے. چھٹا ہمارا ساجن ہے, کیا کہتا ہے ہم کو؟ سجاتا ہے, شنگارتا ہے, وہ گیان گن شکتیوں سے شنگار کر کے پیر گھر لے جا کے سسر گھر بھیجتا ہے. اور پھر چھٹا وہ ساتواں ہے سرجن ہے, ہم کو بچاتا ہے وائرل سے, برائیوں سے بچاتا ہے, انجیکشن لگاتا ہے. اور آٹھواں ہے چائلڈ, ہم کو بچہ انگلی پکڑ کے بھو ساگر سے پار لے جاتا ہے. اور نام آیا ہمارا موسٹ بلوڈ معشوق, شیو شمع ہم پروانے ہیں, ہم کو گلے لگاتا ہے. تو اس پرکار سے رمڑیک طریقے سے سمبندوں سے گنوں سے اسی بات میں کھو جائیں گے تو اتی اندر سکھ کی پراپتی ہوگی. اور یہ جو سنگم یوگا ہے, اتی اندر سکھ پراپتی کرنے کا یوگا ہے, और न सत्युग में मिलेगा न त्रेता द्वापर कलयुग में कहीं नहीं मिलेगा। अभी इस खुशी मजा आनंद अतीन्द्रिय सुख में हम रमण करते रहे और अपने स्टेज को पाले, डबल क्राउन किंग बन जाए, यही हमारा पुरुषार्थ है। और सभी आप भी ऐसा पुरुषार्थ कर रहे होंगे। आगे इतने पुराने भाई कहाँ कहाँ से है बहन जी? बीदर से है, बहुत पुराने सेंटर है, बहुत आप पुरुषार्थ कर रहे होंगे। यहाँ भी देखो योग अच्छा लगाया, चेहरे खिले हुए आप सभी के, बड़ी खुशी की बात है। हमें बहन जी ने मौका दिया आपसे मिलने का, मैं बहुत खुशी हुई। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। चलिए बाबा के पास।
आपने एक घंटे से अपने अनुभव की बातें और पुरुषार्थ की बातें भी सुनाई, सबको बहुत अच्छी लगी, प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं। तो हम सब एक हाथ की ताली से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नीचे से खास क्लास कराने के लिए ऊपर आए, शांतिवन से एज भी देखते हैं, इतनी एज है लेकिन कभी भी मना नहीं करते, जब भी बोलो क्लास के लिए तैयार। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।